ओम नमस्ते जी। 388 विश्रव्य कणिका सत्यार प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतरों की समीक्षा चल रही है, जिसके अंतर्गत वेदांतियों का विषय चल पड़ा है। आचार्य शंकर के मत में एक ही ब्रह्म है, जीव की या संसार की पृथक सत्ता नहीं है, इस बात की समीक्षा चल रही थी। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा सकता है कि अविद्या या माया का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह परिवर्तनशील अदलती बदलती रहने वाली है। जिस सत्ता की तीनों कालों में बाधा न हो, सदा अपने रूप में अवस्थित रहे, वही यथार्थ सत्ता है, वह केवल ब्रह्म है। शंकर मत का यह कथन दोनों प्रकार से चिंतनीय है। अविद्या अथवा माया का अस्तित्व भी त्रिकाला बाध्य है। अविद्या कभी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती, परिणाम वह परिवर्तन तो उसका स्वरूप ही है। वह तीनों कालों में कभी अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करती। दूसरे प्रकार से यह कथन इस रूप में असंगत है कि शंकर मत में ब्रह्म का परिणाम जगत माना गया है, तब ब्रह्म भी अविद्या के समान परिणामी अथवा परिवर्तनशील क्यों न माना जाएगा। ब्रह्म को उपादान मानकर मुंह से भले ही यह कहा जाता रहे कि उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता, पर यह दोनों कथन परस्पर विरोधी हैं कि वह उपादान भी है और अपरिणामी भी। अविद्या का अनादि शांत माना गया। प्रथम तो जो अनादि है वह अनंत होगा ही, फिर जगत का कारण होते हुए वह शांत कैसे हो सकती है, यह बात शंकर मत में सर्वथा स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अविद्या नष्ट हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहता है। यद्यपि इस कथन में ब्रह्म का ज्ञान किसको होता है, यदि ब्रह्म को तो क्या ब्रह्म अभी तक अज्ञानी था, यदि था तो सर्वज्ञ ब्रह्म अज्ञानी कैसे हो गया। माया के संपर्क से कहा जाए तो अचेतन माया सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन ब्रह्म को कैसे अभिभूत कर लेती है, इत्यादि विकल्पों का कोई संतोषजनक समाधान शंकर मत में नहीं है। फिर भी यह मानकर आगे विचार करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी मुक्त हो जाता है और माया का अंत, इसलिए अविद्या या माया को शांत माना गया है। पर इस विषय में यह सोचने की बात है कि यह सृष्टि क्रम अनादि काल से चला आता है, इस काल में अनेकानेक ज्ञानी मुक्त हुए होंगे, परंतु अविद्या का पसारा उसी तरह चालू है। संसार चक्र बराबर चला आ रहा है, जो शंकर मत में अविद्या का कारण है। अनादि काल से आज तक जैसे यह अपनी स्थिति में बराबर विद्यमान है, ऐसे ही अनंत काल तक चलता रह सकता है, तब अविद्या को शांत कैसे कहा जा सकता है। इस पर कहा जाता है कि अविद्या के दो भेद हैं, मूला अविद्या और तूला अविद्या। तूला अविद्या व्यक्तिगत है, प्रति व्यक्ति नियत है, व्यक्ति का मोक्ष होने पर उसका नाश हो जाता है। मूला अविद्या समष्टिगत है, यानी सर्वव्यापक है। इस मूला अविद्या के कारण संसार चक्र चालू रहता है, क्योंकि संसार का क्रम सदा बना रहता है, इसलिए मूला अविद्या को अनादि अनंत मानना चाहिए। अगत्या ऐसा मानने पर ब्रह्म की भ्रांति अविद्या का भी अनादि अनंत अस्तित्व हो जाता है। वस्तुतः शंकर मत में जगत के उपादान कारण प्रकृति को ही अविद्या का नाम दिया गया। इस प्रकार छह पदार्थों के अनादि होने का शंकरवाद अत्यंत शिथिल होने से तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह कहा जा सकता है कि जो तत्व त्रिकालाबाध्य है उसकी यथार्थ सत्ता है, सत्य है, तीनों काल में जिसकी बाधा न हो, एक रूप रहे, वही तो पदार्थ सत्ता रूप में यथार्थ माना जाएगा। ऐसी सत्ता केवल ब्रह्म है, जगत की बाधा होती है, यह परिणामी परिवर्तनशीला है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर इसकी बाधा हो जाती है, साक्षात्कर्ता के लिए यह नहीं के बराबर है, अतः बाधित है। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर जगत यथार्थ सत्ता की परिभाषा में आता है। जगत वस्तुतः कार्य तत्व है, जो किसी मूल कारण से इस रूप में आया है। कार्य वस्तु अवश्य परिणामी अथवा परिवर्तनशील होती है, यह उसका स्वरूप है, अतः यह स्थिति या स्वरूप इसका कभी नहीं छूटता। एक वस्तु परिणामी है, दूसरी अपरिणामी, दोनों की अपनी स्थिति है, दोनों अपने स्वरूप का परित्याग कभी नहीं करती, तब उन दोनों की सत्ता को यथार्थ क्यों न माना जाए। उनमें से एक को सत्य और दूसरे को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है। इसलिए केवल परिणामी होने से जगत को मिथ्या नहीं माना जा सकता। जगत कार्य है, अपने किसी मूल कारण से इस रूप में परिणत हुआ है, यह सर्ववादी सम्मत है। कारण यद्यपि अनेक प्रकार के माने गए हैं, यहाँ केवल उपादान कारण से तात्पर्य है। कहा जाता है कि जगत और जगत का कारण इसलिए मिथ्या हैं कि वे बाधित हो जाते हैं। आचार्य शंकर ने जगत का उपादान कारण ब्रह्म को माना है, तो उसी नियम के अनुसार अब ब्रह्म को मिथ्या जानना चाहिए। ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानकर उसे परिणामी होने से कैसे बचाया जा सकता है? कहा जाता है कि यह सब माया या अविद्या का प्रभाव है, उसी के द्वारा ब्रह्म इस रूप में आभासित होता है। परंतु जो वस्तु ब्रह्म को भी अन्यथा आभासित कर देती है, उसे मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? जो सत्य को भी प्रभावित कर देती है, वह तो सत्य से भी सत्य होनी चाहिए। फलतः जगत की यथार्थता को चुनौती देना सर्वथा अयथार्थ है। वस्तुतः जगत की सत्ता ही ब्रह्म के अस्तित्व को प्रकट करती है। तभी तो ब्रह्म के जिज्ञासु यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र 111 को उसका परिचय देते हुए सूत्रकार ने बताया, यस्माद्यस्य यतः 112, अर्थात जिससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म और उसकी सृष्टि दोनों अपने रूप में यथार्थ हैं, यही सत्य है। माया, कहा जाता है कि जगत अनिर्वचनीय माया का परिणाम है, ब्रह्म का नहीं। ब्रह्म का तो यह विवर्त है, इसलिए जगत के परिणामी होने से ब्रह्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शंकर विचार से माया को सत असत अथवा सदसत उभय रूप कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका इन विकल्पों में से किसी रूप में कथन या निर्वचन किया जाना अशक्य है, इसलिए उसका स्वरूप अनिर्वचनीय ही कहा गया है। तब प्रश्न उपस्थित होता है, उसकी स्थिति क्या है? क्या वह कोई स्वतंत्र तत्व है? यदि ऐसा माना जाए तो अद्वैत सिद्धांत ही निरस्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त एक अन्य तत्व की शक्ति रूप एक अन्य तत्व की सत्ता सिद्ध हो जाएगी, जो शंकर मत को स्वीकार्य नहीं। इसलिए माया की ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति के रूप में कल्पना की गई। अब यदि माया शक्ति को शक्तिमान ब्रह्म से भिन्न माना जाए तो द्वैत की प्राप्ति हो गई। यदि उसे ब्रह्म का स्वरूप मानकर उससे अभिन्न माना जाए तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है और माया अनिर्वचनीय है। इन स्थितियों को एक नहीं माना जा सकता। शंकर मत के आचार्यों ने माया को अनिर्वचनीय कहकर अपनी जान तो बचा ली, क्योंकि जिस रूप में इसे उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका उपपादन किसी प्रकार संभव नहीं था। इसलिए अपने ही वाकजाल में से अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए उन्होंने यह सीधा रास्ता निकाल लिया कि उसे अनिर्वचनीय कह दिया। ऐसा कह देने से अब किसी को कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रही। पर आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्म को तो उन्होंने आसानी से पहचान लिया, पर उसकी चेरी माया को आज तक नहीं पहचान पाए। एकमात्र तत्व विविध रूप में परिणत होता हो, ऐसा एक भी दृष्टांत संसार में उपलब्ध नहीं है। ऐसा मानने वाले आचार्य भी अपनी बात पूरी तरह न निभा सके। प्रकृति नाम से उन्हें चिढ़ यानी एलर्जी थी, क्योंकि यह उनके मत में बाधक बनती थी। परंतु इसके बिना उनका काम भी नहीं चलता था, इसलिए उन्होंने माया नामक कल्पना करनी पड़ी। केवल कथन मात्र से एकमात्र ब्रह्म को मानकर वे आचार्य प्रकृति से ब्रह्म का पीछा न छुड़ा सके। वह उसके साथ लगी ही रहती है, पर पहचान जाने पर भगाए जाने के डर से उसने अपना नाम बदलकर माया रख लिया। इसमें श्वेता शतर उपनिषद का यह वक्तव्य साक्षी है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम विश्वमिदं जगत, श्वेता शतर उपनिषद 4:10। अर्थात प्रकृति का ही दूसरा नाम माया है और उसका नियंता होने से ब्रह्म माई या महेश्वर कहता है। ब्रह्म के शरीर रूप में कल्पित प्रकृति के अवयवों से यह जगत व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि उस महेश्वर के द्वारा प्रकृति जगत रूप में परिणत हुई है। इसी वक्तव्य का अनुमोदन कथन की पुष्टि करते हुए अगले संदर्भ में कहा है, अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध, श्वेता शतर उपनिषद 4:9। माई यानी प्रकृति का अधिष्ठाता ब्रह्म अस्मात् इस प्रकृति से समस्त विश्व की रचना करता है। उसका सजातीय दूसरा जीवात्मा है जो इस प्रकृति माया जाल में फंसा रहता है। उक्त प्रकार दोनों संदर्भों में प्रकृति और ब्रह्म दोनों की सत्ता की स्पष्ट घोषणा करते हुए प्रसंगवश ब्रह्मेतर जीवात्म स्वरूप जीवात्म तत्व का भी संकेत कर दिया गया है। प्रकृति के समस्त गुण माया में हैं, वह विविध रूपा है, इसलिए जगत उसका विकार व परिणाम है। माया ब्रह्म माया यानी प्रकृति से जगत का निर्माण करता है। इस रूप में माया उसकी शक्ति कही जा सकती है। इस स्थिति का अपलाप करने में आचार्य शंकर सफल नहीं हो सके। अनथक प्रयास करने पर भी वे माया नामधारी प्रकृति से ब्रह्म का पीछा न छुड़ा सके। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान माने जाने का इतना ही तात्पर्य है कि माया या प्रकृति से जगत परिणति में निर्माता के रूप में उसे अन्य किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। अनंत विश्व का निर्माण और उसका नियमित संचालन उसकी सर्वशक्तिमत्ता का ज्वलंत प्रमाण है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।